क्रमांक 166। हे शुद्धात्मा, तू मुक्त स्वरूप है। तुझे पहचानने से 5 प्रकार के परावर्तनों से छुटकारा होता है, इसलिए तू संपूर्ण मुक्ति का दाता है। तुझ पर निरंतर दृष्टि रखने से, तेरी शरण में आने से जन्म मरण मिटते हैं। क्रमांक 167। वाणी और विभावों से भिन्न तथापि कथमचित गुरु वचनों से ज्ञात हो सके, ऐसा जो चैतन्य तत्व, उसकी अगाधता, अपूर्वता, अचिंत्यता गुरु बतलाते हैं। शुभाशुभ भावों से दूर चैतन्य तत्व अपने में निवास करता है। ऐसा भेद ज्ञान गुरु वचनों द्वारा करके जो शुद्ध दृष्टिवान हो, उसे यथार्थ दृष्टि होती है, लीनता के अंश बढ़ते हैं, मुनि दशा में अधिक लीनता होती है और केवल ज्ञान प्रकट होकर परिपूर्ण मुक्ति पर्याय प्राप्त होती है। क्रमांक 168। सम्यक दर्शन होते ही जीव चैतन्य महल का स्वामी बन गया। तीव्र पुरुषार्थी को महल का अस्थिरता रूप कचरा निकालने में कम समय लगता है, मंद पुरुषार्थी को अधिक समय लगता है, परंतु दोनों अल्प अधिक समय में सब कचरा निकालकर केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे ही। क्रमांक 169। विभावों में और 5 परावर्तनों में कहीं विश्रांति नहीं है। चैतन्य गृह ही सच्चा विश्रांति गृह है। मुनिवर उसमें बारंबार निर्विकल्प रूप से प्रवेश करके विशेष विश्राम पाते हैं। बाहर आए नहीं कि अंदर चले जाते हैं। क्रमांक 170। एक चैतन्य को ही ग्रहण कर सर्व ही विभावों से परिमुक्त अत्यंत निर्मल निज परमात्म तत्व को ही ग्रहण कर उसी में लीन हो। एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति छोड़ दे। क्रमांक 171। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। चैतन्य की महिमा और संसार की महिमा 2 एक साथ नहीं रह सकती। कुछ जीव मात्र क्षणिक वैराग्य करते हैं कि संसार अशरण है, अनित्य है। उन्हें चैतन्य की समीपता नहीं होती, परंतु चैतन्य के महिमा पूर्वक जिसे विभावों की महिमा छूट जाए, चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से संसार की महिमा छूट जाए, वह चैतन्य के समीप आता है। चैतन्य तो कोई अपूर्व वस्तु है, उसकी पहचान करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। क्रमांक 172। जैसे कोई राजमहल को पाकर फिर बाहर आए तो खेद होता है, वैसे ही सुखधाम आत्मा को प्राप्त करके बाहर आ जाने पर खेद होता है। शांति और आनंद का स्थान आत्मा ही है, उसमें दुख एवं मलिनता नहीं है। ऐसी दृष्टि तो ज्ञानी को निरंतर रहती है। क्रमांक 173। आँख में किरकिरी नहीं समाती। उसी प्रकार विभाव का अंश हो तब तक स्वभाव की पूर्णता नहीं होती। अल्प संज्वलन कषाय भी हैं, तब तक वितरागता और केवल ज्ञान नहीं होता। क्रमांक 174। मैं हूँ चैतन्य, जिसे घर नहीं मिला है। ऐसे मनुष्य को बाहर खड़े खड़े बाहर की वस्तुएं धमाल देखने पर अशांति रहती है, परंतु जिसे घर मिल गया है उसे घर में रहते हुए बाहर की वस्तुएं धमाल देखने पर शांति रहती है। उसी प्रकार जिसे चैतन्य घर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे उपयोग बाहर जाए तब भी शांति रहती है। क्रमांक 175। साधक जीव को अपने अनेक गुणों की पर्याय निर्मल होती हैं, खिलती हैं। जिस प्रकार नंदनवन में अनेक वृक्षों के विविध प्रकार के पत्र पुष्प फलादि खिल उठते हैं, उसी प्रकार साधक आत्मा को चैतन्य रूपी नंदनवन में अनेक गुणों की विविध प्रकार की पर्याय खिल उठती हैं। क्रमांक 176। मुक्त दशा परमानंद का मंदिर है। उस मंदिर में निवास करने वाले मुक्त आत्मा को असंख्य प्रदेशों में अनंत आनंद परिणमित होता है। इस मोक्ष रूप परमानंद मंदिर का द्वार साम्य भाव है। ज्ञायक भाव रूप परिणमित होकर विशेष स्थिरता होने से साम्य भाव प्रकट होता है। क्रमांक 177। चैतन्य के स्वानुभूति रूप खिले हुए नंदनवन में साधक आत्मा आनंदमय विहार करता है। बाहर आने पर कहीं रस नहीं आता। क्रमांक 178। पहले ध्यान सच्चा नहीं होता, पहले ज्ञान सच्चा होता है कि मैं इन शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सबसे पृथक हूँ। अंतर में जो विभाव होता है वह मैं नहीं हूँ। ऊंचे से ऊंचे जो शुभ भाव वह मैं नहीं हूँ। मैं तो सबसे भिन्न ज्ञायक हूँ। क्रमांक 189। ध्यान वह साधक का कर्तव्य है, परंतु वह तुझसे न हो तो श्रद्धा तो बराबर अवश्य करना। तुझ में अगाध शक्ति भरी है, उसका यथार्थ श्रद्धांत तो अवश्य करने योग्य है। क्रमांक 180। उपयोग अंतर में जाए वहां समस्त नए पक्ष छूट जाते हैं। आत्मा जैसा है वैसा अनुभव में आता है। जिस प्रकार गुफा में जाना हो तो वाहन प्रवेश द्वार तक आता है, फिर अपने अकेले को अंदर जाना पड़ता है, उसी प्रकार चैतन्य की गुफा में जीव स्वयं अकेला अंदर जाता है। भेदवाद सब छूट जाते हैं। पहचानने के लिए यह सब आता है कि चेतन कैसा है। यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह विभाव है, यह कर्म है, यह नय है। परंतु जहाँ अंदर प्रवेश करे वहाँ सब छूट जाते हैं। एक एक विकल्प छोड़ने जाए तो कुछ नहीं छूटता, अंदर जाने पर सब छूट जाता है। क्रमांक 181। निर्विकल्प दशा में यह ध्यान है, यह ध्येय है, ऐसे विकल्प टूट चुकते हैं। यद्यपि ज्ञानी को सविकल्प दशा में भी दृष्टि तो परमात्म तत्व पर ही होती है, तथापि पंच परमेष्ठी ध्याता ध्यान ध्येय इत्यादि संबंधी विकल्प भी होते हैं, परंतु निर्विकल्प स्वानुभूति होने पर विकल्प जाल टूट जाता है। शुभाशुभ विकल्प नहीं रहते। उग्र निर्विकल्प दशा में ही मुक्ति है, ऐसा मार्ग है। क्रमांक 182। विकल्प छोड़ दूं, विकल्प छोड़ दूं, ऐसा करने से विकल्प नहीं छूटते। मैं यह ज्ञायक हूँ, अनंत विभूति से भरपूर तत्व हूँ। इस प्रकार अंतर से भेद ज्ञान करे तो उसके बल से निर्विकल्पता हो, विकल्प छूट जाए। क्रमांक 183। चैतन्य देव रमणीय है, उससे पहचान। बाहर रमणीयता नहीं है, शाश्वत आत्मा रमणीय है, उसे ग्रहण कर। क्रियाकांड के आडंबर विविध विकल्प रूप कोलाहल उस पर से दृष्टि हटा ले, आत्मा आडंबर रहित निर्विकल्प है, वहां दृष्टि लगा। चैतन्य रमणता रहित विकल्पों के कोलाहल में तुझे थकान लगेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। तेरा विश्राम गृह आत्मा है, उसमें जा तो तुझे थकान नहीं लगेगी, शांति प्राप्त होगी। क्रमांक 184। चैतन्य की ओर झुकने का प्रयत्न होने पर उसमें ज्ञान की वृद्धि, दर्शन की वृद्धि, चारित्र की वृद्धि, सर्व वृद्धि होती है। अंतर में आवश्यक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, व्रत, तप सब प्रकट होता है। बाह्य क्रियाकांड तो परमार्थतः कोलाहल है। शुभ भाव भूमिकानुसार आते हैं, परंतु वह शांति का मार्ग नहीं है। स्थिर होकर अंतर में बैठ जाना वही कर्तव्य है। क्रमांक 185। मुनिराज कहते हैं, चैतन्य पदार्थ पूर्णता से भरा है, उसके अंदर जाना और आत्म संपदा की प्राप्ति करना वही हमारा विषय है। चैतन्य में स्थिर होकर अपूर्वता की प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त नहीं की, तो हमारा जो विषय है वह हमने प्रकट नहीं किया। बाहर में उपयोग आता है तब द्रव्य गुण पर्याय के विचारों में रुकना होता है, किंतु वास्तव में वह हमारा विषय नहीं है। आत्मा में नवीनताओं का भंडार है। भेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा यदि वह नवीनता अपूर्वता प्रकट नहीं की तो मुनिपने में जो करना था वह हमने नहीं किया। क्रमांक 186। गृहस्थाश्रम में वैराग्य होता है, परंतु मुनिराज का वैराग्य कोई और ही होता है। मुनिराज तो वैराग्य महल के शिखर के शिखामणि हैं। क्रमांक 187। मुनि आत्मा के अभ्यास में परायण हैं, वे बारंबार आत्मा में जाते हैं। सविकल्प दशा में भी मुनिपने की मर्यादा लांघकर विशेष बाहर नहीं जाती। मर्यादा छोड़कर विशेष बाहर जाए तो अपनी मुनि दशा ही न रहे। क्रमांक 188। जो न हो सके वह कार्य करने की बुद्धि करना मूर्खता की बात है। अनादि से यह जीव जो नहीं हो सकता उसे करने की बुद्धि करता है, और जो हो सकता है वह नहीं करता। मुनिराज को पर के कर्तृत्व की बुद्धि तो छूट गई है, और आहार विहार आदि के अस्थिरता रूप विकल्प भी बहुत ही मंद होते हैं। उपदेश का प्रसंग आए तो उपदेश देते हैं, परंतु विकल्प का जाल नहीं चलता। क्रमांक 199। अपनी दृष्टि की डोर चैतन्य पर बांध दे। पतंग आकाश में उड़ाए, परंतु डोर हाथ में रहती है। उसी प्रकार दृष्टि की डोर चैतन्य में बांध दे, फिर भले उपयोग बाहर जाता हो, अनादि अनंत अद्भुत आत्मा का परम पारिणामिक भाव रूप अखंड एक भाव का अवलंबन ले। परिपूर्ण आत्मा का आश्रय करेगा तो पूर्णता आएगी। गुरु की वाणी प्रबल निमित्त है, परंतु समझकर आश्रय तो अपने को ही करना है। क्रमांक 190। मैंने अनादि काल से सब बाहर बाहर का ग्रहण किया, बाहर का ज्ञान किया, बाहर का ध्यान किया, बाहर का मुनिपना धारण किया और मान लिया कि मैंने बहुत किया। शुभ भाव किए, परंतु दृष्टि पर्याय पर थी। अगाध शक्तिवान जो चैतन्य चक्रवर्ती, उसे नहीं पहचाना, नहीं ग्रहण किया। सामान्य स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, विशेष को ग्रहण किया। क्रमांक 191। दृष्टि की डोर हाथ में रख, सामान्य स्वरूप को ग्रहण कर, फिर भले ही सब ज्ञान हो। ऐसा करते करते अंतर में विशेष लीनता होगी, साधक दशा बढ़ती जाएगी। देश व्रत और महाव्रत सामान्य स्वरूप के आलंबन से आते हैं। मुख्यतः निरंतर सामान्य स्वरूप की द्रव्य की होती हैं। क्रमांक 192। आत्मा तो निवृत्त स्वरूप, शांत स्वरूप है। मुनिराज को उसमें से बाहर आना प्रवृत्ति रूप लगता है। उच्च से उच्च शुभ भाव भी उन्हें बोझ रूप लगते हैं, मानो पर्वत उठाना हो। शाश्वत आत्मा की ही उग्र धुन लगी है। आत्मा के प्रचुर स्वसंवेदन में से बाहर आना नहीं सुहाता। क्रमांक 193। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञायक को ज्ञायक द्वारा ही अपने में धारण कर रखता है, टिकाए रखता है, स्थिर रखता है। ऐसी सहज दशा होती है। सम्यक दृष्टि जीव को तथा मुनि को वेद ज्ञान की परिणति तो चलती ही रहती है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को उसकी दशा के अनुसार उपयोग अंतर में जाता है और बाहर आता है। मुनिराज को तो उपयोग अति शीघ्रता से बारंबार अंतर में उतर जाता है। भेद ज्ञान की परिणति ज्ञातृत्व धारा दोनों के चलती ही रहती है। उन्हें भेद ज्ञान प्रकट हुआ तब से कोई काल पुरुषार्थ रहित नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान के अनुसार और मुनि को छठवें सातवें गुण स्थान के अनुसार पुरुषार्थ वर्तता रहता है। पुरुषार्थ के बिना कहीं परिणति स्थिर नहीं रहती। सहज भी है, पुरुषार्थ भी है। क्रमांक 194। पूज्य गुरुदेव ने मोक्ष का शाश्वत मार्ग अंतर में बतलाया है, उस मार्ग पर जा। क्रमांक 195। सबको एक ही करना है, प्रतीक्षण आत्मा को ही ऊर्ध्व रखना, आत्मा की ही प्रमुखता रखना। जिज्ञासु की भूमिका में भी आत्मा को ही अधिक रखने का अभ्यास करना। क्रमांक 196। स्वरूप तो सहज ही है, सुगम ही है, अनभ्यास के कारण दुर्गम लगता है। कोई दूसरे की संगत में पड़ गया हो तो उसे वह संग छोड़ना दुष्कर मालूम होता है, वास्तव में दुष्कर नहीं है, आदत के कारण दुष्कर मानता है। परसंग छोड़कर स्वयं स्वतंत्र रूप से अलग रहना, उसमें दुष्करता कैसी? वैसे ही अपना स्वभाव प्राप्त करना, उसमें दुष्करता कैसी? वह तो सुगम ही होगा ना। क्रमांक 197। प्रज्ञा चैनी को शुभाशुभ भाव और ज्ञान की सूक्ष्म अंतःसंधि में पटकना, उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके उन दोनों की संधि में सावधान होकर उसका प्रहार करना। सावधान होकर अर्थात बराबर सूक्ष्म उपयोग करके बराबर लक्षण द्वारा पहचान कर। अभ्रक के पर्त कितने पतले होते हैं, किंतु उन्हें बराबर सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव विभाव के बीच प्रज्ञा द्वारा भेद कर। जिस क्षण विभाव भाव वर्तता है, उसी समय ज्ञातृत्व धारा द्वारा स्वभाव को भिन्न जान ले। भिन्न ही है, परंतु तुझे नहीं भासता। विभाव और ज्ञायक है तो भिन्न भिन्न ही, जैसे पाषाण और सोना एकमेक दिखने पर भी भिन्न ही है तदनुसार। प्रश्न। सोना तो चमकता है, इसलिए पत्थर और सोना दोनों भिन्न ज्ञात होते हैं, परंतु यह कैसे भिन्न ज्ञात हो? उत्तर। यह ज्ञान भी चमकता ही है ना? विभाव भाव नहीं चमकते, किंतु सर्वत्र ज्ञान ही चमकता है, ज्ञात होता है। ज्ञान की चमक चारों ओर फैल रही है। ज्ञान की चमक बिना सोने की चमक काहे में ज्ञात होगी? जैसे सच्चे मोती और खोटे मोती इकट्ठे हों, तो मोती का पारखी उसमें से सच्चे मोतियों को अलग कर लेता है। उसी प्रकार आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करना, जो जानने वाला है सो मैं, जो देखने वाला है सो मैं। इस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके आत्मा को और विभाव को पृथक किया जा सकता है। यह पृथक करने का कार्य प्रज्ञा से ही होता है। व्रत, तप या त्यागादि भले हों, परंतु वे साधन नहीं होते। साधन तो प्रज्ञा ही है। स्वभाव की महिमा से पर पदार्थों के प्रति रस बुद्धि, सुख बुद्धि टूट जाती है। स्वभाव में ही रस आता है, दूसरा सब नीरस लगता है। तभी अंतर की सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है। ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर में प्रज्ञा छयनी का कार्य करे। क्रमांक 198। ज्ञातापने के अभ्यास से ज्ञातापना प्रकट होने पर कर्तापना छूटता है। विभाव अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए कहीं आत्मद्रव्य स्वयं उछलकर विभाव में एकमेक नहीं हो जाता। द्रव्य तो शुद्ध रहता है, मात्र अनादिकालीन मान्यता के कारण पर ऐसे जड़ पदार्थ को मैं करता हूँ, रागादि मेरा स्वरूप है, मैं सचमुच विभाव का करता हूँ, इत्यादि भ्रमणा हो रही है। यथार्थ ज्ञातृत्व धारा प्रकट हो तो कर्तापना छूटता है। क्रमांक 199। जीव को अटकने के जो अनेक प्रकार हैं, उन सब में से विमुख हो और मात्र चैतन्य दरबार में ही उपयोग को लगा दे, अवश्य प्राप्ति होगी। अनंत अनंत काल से अनंत जीवों ने इसी प्रकार पुरुषार्थ किया है, इसलिए तू भी ऐसा कर। अनंत अनंत काल गया, जीव कहीं न कहीं अटकता ही है ना? अटकने के तो अनेक अनेक प्रकार हैं, किंतु सफल होने का एक ही प्रकार है, वह है चैतन्य दरबार में जाना। स्वयं कहाँ अटकता है उसका यदि स्वयं ख्याल करे तो बराबर जान सकता है। द्रव्यलिंगी साधु होकर भी जीव कहीं सूक्ष्म रूप से अटक जाता है, शुभ भाव की मिठास में रुक जाता है। यह राग की मंदता, यह 28 मूल गुण, बस यही मैं हूँ, यही मोक्ष का मार्ग है, इत्यादि किसी प्रकार संतुष्ट होकर अटक जाता है। परंतु यह अंतर में विकल्पों के साथ एकता बुद्धि तो पड़ी ही है, उसे क्यों नहीं देखता? अंतर में यह शांति क्यों नहीं दिखाई देती? पाप भाव को त्याग कर सर्वस्व कर लिया मानकर संतुष्ट हो जाता है। सच्चे आत्मार्थी को तथा सम्यक दृष्टि को तो अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। इस प्रकार पूर्णता तक बहुत बाकी है, ऐसी ही भावना रहती है और तभी पुरुषार्थ अखंड रह पाता है। गृहस्थाश्रम में सम्यक त्वी ने मूल को पकड़ लिया है, दृष्टि अपेक्षा से सब कुछ कर लिया है। अस्थिरता रूप शाखाएं पत्ते जरूर सूख जाएंगे, द्रव्यलिंगी साधु ने मूल को ही नहीं पकड़ा है, उसने कुछ किया ही नहीं। बाह्य दृष्टि लोगों को ऐसा भले ही लगे कि सम्यक्त्वी को अभी बहुत बाकी है और द्रव्यलिंगी मुनि ने बहुत कर लिया, परंतु ऐसा नहीं है। परिशह सहन करे किंतु अंतर में कर्तृत्व बुद्धि नहीं टूटी। आकुलता का वेदन होता है, उसने कुछ किया ही नहीं। क्रमांक 200। शुद्ध नय की अनुभूति अर्थात शुद्ध नय की विषयभूत अबद्ध स्पृष्टादि रूप शुद्ध आत्मा की अनुभूति सो संपूर्ण जीन शासन की अनुभूति है। 14 ब्रह्मांड के भाव उसमें आ गए। मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान, मोक्ष इत्यादि सब जान लिया। सर्वगुणांश सो सम्यक्त्व, अनंत गुणों का अंश प्रकट हुआ। समस्त लोकालोक का स्वरूप ज्ञात हो गया। जिस मार्ग से यह सम्यक्त्व हुआ उसी मार्ग से मुनिपना और केवल ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञात हो गया। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ, इसी मार्ग से देशवीरतीपना, मुनिपना, पूर्ण चारित्र एवं केवल ज्ञान सब प्रकट होगा। नमूना देखने से पूरे माल का पता चल जाता है। दूज की चंद्र की कला द्वारा पूरे चंद्र का ख्याल आ जाता है। गुड़ की एक डली में पूरी गुड़ की पारी का पता लग जाता है। वहां दृष्टांत में तो भिन्न भिन्न द्रव्य है और यह तो एक ही द्रव्य है, इसलिए सम्यक्त्व में 14 ब्रह्मांड के भाव आ गए। इसी मार्ग से केवल ज्ञान होगा। जिस प्रकार अंश प्रकट हुआ उसी प्रकार पूर्णता प्रकट होगी, इसलिए शुद्ध नय की अनुभूति अर्थात शुद्ध आत्मा की अनुभूति वह संपूर्ण जीन शासन की अनुभूति है। क्रमांक 201। अपरिणामी निज आत्मा का आश्रय लेने को कहा जाता है। वहां अपरिणामी माने पूर्ण ज्ञायक शास्त्र में निश्चय के विषयभूत जो अखंड ज्ञायक कहा है वही यह अपरिणामी निजात्मा। प्रमाण अपेक्षा से आत्मद्रव्य मात्र अपरिणामी ही नहीं है, अपरिणामी तथा परिणामी है। परंतु अपरिणामी तत्व पर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं, परिणाम कहीं चले नहीं जाते। परिणाम कहाँ चले जाए? परिणमंतु पर्याय स्वभाव के कारण होता ही रहता है। सिद्ध में भी परिणति तो होती है, परंतु अपरिणामी तत्व पर, ज्ञायक पर दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। इसलिए यह मेरी ज्ञान की पर्याय, यह मेरी द्रव्य की पर्याय, इस प्रकार पर्याय में किस लिए रुकता है? निष्क्रिय तत्व पर, तल पर दृष्टि स्थापित करना। परिणाम तो होते ही रहेंगे, परंतु यह मेरी अमुक गुण पर्याय हुई, यह मेरे ऐसे परिणाम हुए, ऐसा जोर किस लिए देता है? पर्याय में पलटते अंश में द्रव्य का परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य थोड़ा ही आता है। उस परिपूर्ण नित्य सामर्थ्य का अवलंबन करना, ज्ञानानंद सागर की तरंगों को न देखकर उसके दल पर दृष्टि स्थापित कर, तरंगे तो उछलती ही रहेगी, तू उनका अवलंबन किस लिए लेता है? अनंत गुणों के भेद पर से भी दृष्टि हटा ले। अनंत गुणमय एक नित्य निज तत्व, अपरिणामी अभेद एक दल, उसमें दृष्टि दे। पूर्ण नित्य अभेद का जोर ला, तू ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। क्रमांक 202। दृढ़ प्रतीति करके सूक्ष्म उपयोग वाला होकर द्रव्य में गहरे उतर जा, द्रव्य के पाताल में जा, वहां से तुझे शांति एवं आनंद प्राप्त होगा। खूब धीर गंभीर होकर द्रव्य के तल का स्पर्श कर,